कीर्तन करने की शैली सबसे अलग थी और उनकी सुंदरता, उनका तपस्या से उनका जिस तरह का शरीर था वो उनको देखते पता चलता था कि भक्त कुछ काफी तपस्या की, चतुर्मास इत्यादि काफी रखते थे। कई बार हमने उनसे प्रार्थना करी कि मेरा कई बार उनके साथ बातचीत हुई तो मैंने बोला महेंद्र बाबू को कि आप दिल्ली आइए कभी, तो दो तीन बार दिल्ली भी आए हैं महेंद्र बाबू। एक बार यही पश्चिम विहार में एक स्कूल के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया था सन 2000 में शायद, और उस कार्यक्रम में हजारों लोग आए थे और बरसात भी बहुत आई थी। महेंद्र बाबू अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे थे, उस समय हम मंदिर में नहीं रहते थे तो, लेकिन वैसे गए थे नृत्य तैयारी करने के लिए। तो पूरी रात वो कीर्तन कर रहे हैं, उन्होंने खूब कीर्तन किया, लेकिन बरसात होने की वजह से संख्या जब कम हुई लोग जाने लगे, लेकिन उसके बाद भी एक बहुत बड़ा समूह भक्तों का वहीं टिका रहा और महेंद्र बाबू ने अपना कीर्तन नहीं रोका और उन्होंने इतना कीर्तन किया कि लोग भी नहीं गए और सब लोग नाचते ही रहे इतना उत्साह से कि पहली बार, क्योंकि पश्चिम विहार जैसे क्षेत्र में जितने लोग वहां आए थे उनके लिए पहला एक दृश्य था ऐसा कि एक ऐसी टीम जिसमें कि अधिकतर सब विदेशी भक्त हों और खासकर महेंद्र बाबू जिस कीर्तन को लीड कर रहे हों, तो उनके लिए एक अजूबा था ये। और उसमें उत्साह से उन्होंने कीर्तन किया कि कोई हिले, दूर दूर तक हम देख रहे थे लोग ताली बजा रहे हैं, टाइम से प्रसाद का पानी भी टपक रहा है, बट स्टिल सब लोग वहां बड़े उत्साहित रहे। फिर दो तीन बार हमने रिक्वेस्ट करी महेंद्र बाबू से कि प्रभु जी कभी आप चलिए, कहते नहीं वृंदावन में रहेंगे। हमने देखा जिन भक्तों को वृंदावन का वास प्राप्त हो चुका है वो वृंदावन छोड़कर नहीं जाना चाहते, तो मैंने एक बार फिर रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा प्रभु जी आप कभी आइए, जैसे कृष्ण बलराम ये हैं ऐसे ही कृष्ण बलराम हमारे मंदिर में भी आ गए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा बहुत सुंदर भी हैं, कहते फिर भी नहीं, कहते हैं वो जो कृष्ण बलराम है आपके वाले वो हमारे कृष्ण बलराम के एक्सपेंशन है। मैं कहा अच्छा, तो मैं कहा फिर कब चलेंगे, तो कहते जब राधा रानी कहेगी, तो अभी राधा रानी नहीं कह रही है मुझे जाने के लिए। तो इस प्रकार उनके साथ बातचीत होती थी और उनका कीर्तन सुनने के लिए दूर दूर से, शाम के समय जब कीर्तन करते थे तो लोग बोलते हैं कि पत्थर भी पड़े हों तो वो भी नाचें। शाम को 6 बजे का जब उनका कीर्तन होता था पूरी दुनिया उमड़ पड़ती थी उनके कीर्तन में। और मैं जब जब वृंदावन गया तब तो मुझे याद है कि मैं जैसे सामने खड़ा होता था उनके, तो उनको पता था कि हमारे को नृत्य करने की आदत है थोड़ी बहुत, तो जैसे हमें देखते थे वो हरे कृष्णा करते थे और कीर्तन तेज होने के बाद इशारा करते थे। उनके साथ के गोपाल भी और ये सब आ नहीं रही माइका, तो नृत्य करने को कहते थे, हम लोग खूब नृत्य करते थे उनके कीर्तन में। तो उस तरह भी एक बार वो वृंदावन के पीछे शॉप में थे, अपनी ड्यूटीज के लिए कुछ खरीद रहे थे, तो मैं वहां गया, मैंने देखा कि महेंद्र बाबू बैठे आज अकेले, तो मैंने जाकर उनके चरणों को पकड़ लिया और दबाना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने मना किया लेकिन मैं फिर भी माना नहीं और मैंने अच्छी मसाज दी, लगभग 15-20 मिनट अच्छी मसाज देने के बाद वो मान गए और करवाते रहे। फिर कुछ प्रश्न मैंने पूछना शुरू कर दिया तो उनका जवाब दिया उन्होंने, फिर मुझे वो साथ लेके गए अपने कमरे में। आप लोगों में कितने लोगों ने उनका रूम देखा है? हाँ, उनका कमरा जो है बहुत ही आध्यात्मिक लगता है देखने में। उनके पास लगभग 1000 से ऊपर शालिग्राम शिलाएं थी जिनकी वो रोज पूजा करते थे और गौर निताई के विग्रह थे उनके पास, और उसी छोटे कमरे में वो एक चटाई लगा के सोते थे, कंप्यूटर सिस्टम रखा था और कुछ हारमोनियम टंगे हुए थे इधर उधर। और जब मैं उनके कमरे में उनके साथ गया तो उन्होंने जो है मेरे से काफी बातचीत करी, वहां भी थोड़ी सेवा करी, मैंने डीटीएस का दर्शन किया, प्रणाम किया, उनके डीटीएस को कुछ ऑफर किया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने मेरा वो ऑटम का कीर्तन सुना है क्या, स्प्रिंग का कीर्तन सुना है क्या? मैं कहा नहीं, कुछ ऋतुओं के बारे में, उनके ऋतुओं के हिसाब से कीर्तन करते थे। कहते ठीक है मैं आपको देता हूं, तो उन्होंने सीडीज निकाली और सीडीज अपने हाथ से सारी बर्न करी और उस पर साइन मतलब लिख कर दिया इंद्रदास इस तरह करके, तो 2 सीडीज दी थी मेरे को, अभी भी मेरे पास है। तो मतलब महेंद्र बाबू का जो कीर्तन था जब वो गए, हम जानते हैं कि किस प्रकार एक घटना से, क्योंकि भक्तों के जाने की घटनाएं ज्यादातर हर एक की घटने जाने की घटनाएं 3-4 ही होती हैं, अचानक जाना है ना, या कई बार थोड़ा कष्ट के रूप में जाने लगता है, जैसे कष्ट में है, या किसी वैसे एक्सीडेंट की तरह जाना है ना, या कोई बीमारी लगने के कारण जाना। तो चार पांच से जाते हैं लोग ज्यादातर, है ना। तो इंद्र प्रभु जो है अंतिम समय में जो है उनको पता चला कि उनके रूम में शायद स्टोव ब्लास्ट हो गया था, और जब उनको कुछ रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने भगवान का नाम लिया और नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़कर जो है उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा। तो जब लोग अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि उन्होंने नित्यानंद के चरण पकड़े हुए और पूरा शरीर उनका जल चुका है। तो वैसे भी वो जैसे बताते थे कई बार वो कि आनंद मंजरी जो है, जो कि बलदेव बलराम जी का ही एक्सपेंशन है, नित्यानंद जी भी सेम उसमें है और नित्यानंद जी के चरणों को पकड़ कर गए। तो काफी अच्छा उन्होंने कभी रिवील भी करते थे चीजों को। और वृंदावन में गोस्वामियों के मंदिरों में जाकर खूब सुंदर कीर्तन करते थे, घंटों कीर्तन करते थे, चाहे वो राधा कुंड में रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि हो, चाहे वृंदावन के किसी और किसी मंदिर में, तो खूब देर तक कीर्तन किया करते थे। तो ये थे हमारे इंद्र प्रभु। इंद्र प्रभु की, इंद्र प्रभु तिरुभावतिथि महामहोत्सव की, श्री वक्रेश्वर पंडित तिरुभावतिथि महामहोत्सव की, ताई गौर प्रेमानंदे मेरा वंश उसकी विषय में पढ़ा नहीं, आपको सुनाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। आज जो है जब मैं पूछ जब हम पूछ रहे हैं कि सुनाई नहीं दे रहे, तो आप कह रहे हैं नहीं सुनाई दे रहा, इसका मतलब आपको सुनाई दे रहा है। अच्छा, इसका मुझे बास थोड़ा कम कर दो, वॉल्यूम थोड़ा, बास को अगर कम करोगे ना तो आवाज क्लियर जाएगी। आपको सुनाई दे रहे हैं आपके इस तरह साउंड है ना, माता जी की तरफ से नहीं आ रहा होगा, थोड़ा बास कम कर दीजिए इसका। तो बोर्ड पर जो है श्लोक चौथे का 85 पढ़ना है ना, देखिया देखिया पुरीर प्रभाव लोके चमत्कार, पूर्व अन्नकूट ये न हेला साक्षात्कार, देखिया पुरीर प्रभाव लोके चमत्कार, पूर्व अन्नकूट ये न हेला साक्षात्कार, देखिया पुरीर प्रभाव लोके चमत्कार, पूर्व अन्नकूट ये न हेला साक्षात्कार। बोलिए देखिया पुरीर प्रभु लोके चमत्कार, पूर्व अन्नकूट साक्षात्कार, देखिया पुरीर प्रभु लोके चमत्कार, पूर्व अन्नकूट ये न हेला साक्षात्कार, देखिया पुरी र प्रभु चमत्कार, पूर्व अन्नकूट ये न हेला साक्षात्कार, देखिया पुरी र प्रभु चमत्कार, देखिया पुरी र प्रभु न चमत्कार, हरे कृष्णा। तो इसका अनुवाद है, माधवेंद्रपुरी का प्रभाव देखकर वहां एकत्र सारे लोग आश्चर्यचकित थे। उन्होंने देखा कि कृष्ण के समय जो अन्नकूट उत्सव मनाया गया था वही अब श्री माधवेंद्रपुरी की कृपा से पुनः मनाया जा रहा है। इससे पहले एक श्लोक और था, उसमें क्योंकि प्रॉफिट नहीं था तो उसलिए लिखा नहीं गया। अन्य ग्रामीण लोक यतु देखित आइल, गोपाल देखी असबे प्रसाद खाइल। न केवल गोवर्धन गांव के लोगों ने अपितु अन्य गांवों से आए हुए लोगों ने भी प्रसाद प्राप्त किया, उन्होंने गोपाल विग्रह का दर्शन किया और उन्हें प्रसाद भी मिला। कितने लोगों ने गोपाल जी के दर्शन किए? ये साक्षी गोपाल नहीं है, ये नाथ द्वारा जी के नाम से जाने जाते हैं, और जयपुर में श्रीनाथ जी, और उदयपुर में उसके आसपास का जो एरिया वहां पर ये मंदिर है। हैं? आपने देखोगे ऐसे करके विग्रह भगवान की नाथ द्वारा जिसे बोलते हैं, तो वो विग्रह वहां पर है। हम लोग गए थे एक बार रात्रि में, हम लोग यहां से गए 7 बजे करीब, सुबह वहां पर 5-6 बजे पहुंच गए थे, तो दर्शन किए फिर शाम की ट्रेन पकड़ के वापस आ गए। तो अगर कोई जाना चाहे तो एक दिन की छुट्टी करके ऐसे जा सकते हैं, तो आसानी से। हरे कृष्ण। यहां पर जो है आज के श्लोक में अन्नकूट की तुलना की जा रही है। जो अन्नकूट माधवेंद्रपुर की कृपा से मनाया गया गोपाल जी के विग्रह को स्थापित करने के बाद, और इस अन्नकूट की व्यवस्था की गई जैसे कि भगवान कृष्ण के समय जब गोवर्धन पर्वत की पूजा हुई और उस समय जो अन्नकूट मनाया गया फेस्टिवल, ठीक उसी तरह बिल्कुल वही माहौल हो गया इस समय। कह रहे हैं यहां पर प्रातन श्रील प्रभुपाद जी बता रहे, श्रील प्रभुपाद की पूरा काल में द्वापर युग के अंत में वृंदावन के ग्वालों ने इंद्रराज की पूजा का प्रबंध कर रखा था, किंतु कृष्ण के कहने पर उन्होंने उसका परित्याग कर दिया। आप लोगों को यह इंसिडेंट मालूम ही होगा कि जब पूरे वृंदावन में गोवर्धन की पूजा के, सॉरी इंद्र की पूजा के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे थे, तो पूरा के पूरे गांव वाले बड़े बड़े ऑफरिंग्स लेकर जा रहे थे, यज्ञ की जो है तैयारियां की जा रही थी। लेकिन उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने इस सब तैयारियों को देखते हुए कहा कि अरे ये सब तैयारियां किस लिए की जा रही है? तो नंद महाराज से पूछा, तो नंद महाराज ने एक 5 साल के बच्चे की तरह कृष्ण को कहा कि ठीक है बेटा, ये बस हम लोग हमेशा करते हैं इसलिए पूजा हो रही है। भगवान से कृष्ण ने तर्क करना शुरू किया कि नहीं नहीं मुझे बताइए ना, क्योंकि मैं तो बड़ा हो चुका हूं, आप ऐसे छोटी थोड़ी सी बात पे प्रश्न का उत्तर दीजिए। उन्होंने कहा हम लोग इंद्र के लिए पूजा कर रहे हैं, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि इंद्र हमें क्या देते हैं? वर्षा प्रदान करते हैं, और वर्षा से क्या होता है? अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न खाने से क्या होता है? शक्ति प्रदान होती है। तो इस प्रकार इंद्र का जो है हमारे जीवन में क्या है, बहुत बड़ा योगदान है। तो कृष्ण को लगा भगवान मैं हूं, अवतार मैंने लिया, पूजा किसी और की हो रही, चक्कर क्या है? तो भगवान ने क्या किया, तर्क करना शुरू किया कि भगवान पिताश्री, इंद्र तो वैसे भी वर्षा करते हैं, वैसे तो भागवतम में कई जगह लिखा है मत भयात, भगवान कह रहे हैं मेरे भय से ये इंद्र वर्षा करते हैं, मेरे भय से ही हवा जो है चलती है और सूर्य तपती, अर्थात सूर्य जो है तप देता है, अर्थात प्रकाश प्रदान करता है। यहां तक कि यमराज भी लोगों को जो उठाने का काम करते हैं वो मेरे भय से करते हैं, कभी छुट्टी पे नहीं जाते यमराज जी कि चलो एक हफ्ते के लिए शिमला हुए हैं, ऐसा नहीं होता, उनका काम बिल्कुल परफेक्ट है। जब जब जिस जिसका समय हो गया उस व्यक्ति के पास यम के दूत पहुंच जाते हैं और कहते हैं चलिए सर अब आपको चलना होगा, और उस व्यक्ति को जाना पड़ता है। और ये घटना आप किसी भी शमशान में जाकर देख सकते हैं, वहां पर हर समय कोई ना कोई व्यक्ति आ रहा है, वहां पर अग्नि कभी भी ठंडी नहीं होती, हर समय कहीं ना कहीं पर सब कुछ जल रहा है। लोगों को लगता है अगर कोई व्यक्ति एक दिन बिता ले तो लोगों को लगता है जैसे कि ये तो नॉन स्टॉप हर व्यक्ति आ रहा है, जल रहा है, जा रहा है, तो उसको लगता है जैसे धीरे धीरे सबका नंबर लगा हुआ है। वहां पर जाकर लोगों को थोड़ा सा वैराग्य उत्पन्न होता है, जैसे कौन सा वैराग्य बोलते हैं, शमशान वैराग्य, बल्कि मरघट वैराग्य। उस वैराग्य से जो है लोगों के अंदर हृदय में कुछ देर के लिए वैराग्य उत्पन्न होता है कि हाँ एक दिन तो मुझे भी यहां पर जाना है। कुछ लोग वहां पर जाकर भी मजाक करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि भाई कौन सी जगह पसंद है तुम्हें, अपनी जगह पहले चुन लीजिए। कई बार देखा गया इस तरह के लोग, और फिर वहां पर भी मोबाइल फोन बजते हैं अब तो खूब खतरनाक। लोगों को जो थोड़ा बहुत पहले वैराग्य आता था वो भी बंद हो गया, और अब वो देखते कि कब जल्दी से अग्नि लगे और कब हम वापस जाएं। लोगों के पास समय नहीं है अब। और इस प्रकार जो थोड़ी देर के लिए वैराग्य उत्पन्न होता था अब नहीं होता। जैसे एक बार घटना सुनाई थी कि एक बार एक बड़े सेल्फ रियलाइज्ड आदमी को देखने के लिए, मिलने के लिए एक व्यक्ति आए। उन्होंने कहा, उनके घर पहुंचे तो उनकी वाइफ ने कहा वो तो आज शमशान घाट गए हैं किसी के काम से। तो कहते अच्छा, तो कहते बट मैंने उनको कभी देखा नहीं, मैं जाऊंगा तो मिलूंगा कैसे उनसे, पहचानूंगा कैसे। तो उन्होंने कहा उनके ज्ञान से, उनकी तेज से उनका मस्तक सदैव चमकता रहता है। कहते ठीक है, तुम उनको पहचान जाओगे। कहते ठीक है। वो शमशान घाट गए तो क्या देखते हैं, सबके माथे चमक रहे हैं। वो कहते ये क्या मतलब है। तो वो वापस उसकी वाइफ के पास आए, कहते वहां तो सबके माथे चमक रहे हैं। कहते क्या देखा आपने। कहते शमशान के अंदर गया और सबके मस्तक चमक रहे थे तो मैं पहचान नहीं पाया कि आपके पति कौन से। कहते आप शमशान के बाहर खड़े होइए तो आपको पता चल जाएगा। तो वो शमशान के बाहर खड़े हो गए। तो धीरे धीरे जब शमशान से सब लोग जलते हैं, फिर फैमिली खड़ी होती है, हरे कृष्णा करती है और सबको जाने देती है कि भाई ठीक है अब चलिए हो गया टाइम। तो धीरे धीरे सब वापस जा रहे थे तो क्या देखते हैं कि सबके जो मस्तक चमक रहे थे, धीरे धीरे शमशान के बाहर आते ही फीके पड़ने लगे। लाइट उनकी जैसे बल्ब जो है धीरे धीरे फ्यूज सा होने लगा। तो सबके बल्ब फ्यूज होते गए लेकिन एक आदमी का मस्तक अभी भी चमक रहा था। तो समझ गए कि शायद यही है। उनसे जाके पूछा, कहते हाँ जी, कहते मैं ही। तो फिर बातचीत शुरू हुई। तो समझ गए, कहते उन्होंने पूछा ये क्या चक्कर था। वो समझ नहीं आया, अंदर सबके मस्तक चमक रहे थे, बाहर आके सबके फ्यूज हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये भगवान के ज्ञान के द्वारा जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है, वो जान जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं और भगवान का अंश हूं। ऐसे लोग ज्ञान के द्वारा अपने सदैव उनकी कल्कि अर्थात उनका मस्तक चमकता रहता है। तो कहते फिर इनका, कहते इनका क्या था, इनको थोड़ी देर के लिए वैराग्य उत्पन्न हुआ था, अंदर जाने के बाद इन्हें पता चला हां शरीर जलाया जा रहा है, इसके अंदर का आत्मा तो कहीं और चला जाता है, हम सब भगवान के अंश हैं। कुछ देर के लिए उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ, ज्ञान में आए, इसलिए सबका मस्तक चमक रहा था। जैसे मंदिर पे आने में सबका मस्तक चमक पड़ता है लेकिन बाहर जाते हैं तो फिर से बुझ जाता है। लोग यहां के कस्में खाते हैं कि भगवान आज के बाद तो बस भक्ति, आज के बाद तो मैं ये तपस्या करूंगा, ऐसा कुछ करना शुरू करूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा। लेकिन जैसे ही व्यक्ति बाहर जाता है तो उसका भी बल फ्यूज हो जाता है, मटेरियल अट्रैक्शन इतने ज्यादा हैं। तो इसी प्रकार यहां पर जो है हम बता रहे थे कि इंद्र जो है अपनी भक्ति कराना चाहते, तो कृष्ण ने तर्क दिया कि वर्षा तो हर जगह होती है, आप पूजा कर रहे हो, ये जो नदी है, नाले हैं, पार्क हैं, सड़कें हैं, ये थोड़ी पूजा करती हैं। बरसात का पानी तो उधर भी गिरता है, समुद्र पे भी गिरता है। इसका मतलब क्या है कि ये अपना भी काम होता है, लेकिन अर्थात इसके पीछे अल्टीमेटली हाथ भगवान का ही है, क्योंकि भगवान के भय से ये सारे काम होते हैं और अदरवाइज ये सब काम ना करें। इसलिए बताया गया, चाणक्य पंडित कहते हैं कि कलयुग में ब्राह्मण भी डंडे के बल पर ही पूजा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, क्योंकि आलस्य ज्यादा है। तमोगुण और रजोगुण इतना अधिक है कि कोई भी व्यक्ति स्वतः ही, क्योंकि प्रेम किसी के हृदय में नहीं है, स्वतः ही भगवान की भक्ति की ओर आकर्षित नहीं होगा। उसका आकर्षण कहां रहेगा, भौतिक वस्तुओं पर। लेकिन बताया जाता है कि जब तक पीछे डंडा ना रहे, जिसे बोलते हैं कि कोई अथॉरिटी ना रहे, सुपरविजन ना रहे, तब तक व्यक्ति भक्ति भी नहीं करेगा। तो इसलिए हम देखते हैं, हम जानते हैं कि शुरुआत में लोग अट्रैक्शन के द्वारा आ तो जाते हैं, लेकिन उनसे लंबे समय तक भक्ति कराए रखने के लिए साधना भक्ति का खूब स्ट्रांगली पालन करना पड़ता है। नहीं तो धीरे धीरे व्यक्ति मटेरियल अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होकर फिर से भौतिकतावादी लीन हो जाता है। तो इस प्रकार जो है भगवान ने तर्क दिया और बताया कि हमें इंद्र की नहीं, हमें तो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन हमें सब कुछ प्रदान करता है। गोवर्धन हमारी गायों को हरी हरी घास देता है, जिससे वो दूध देती है, और दूध से हम सारी चीजें बनाते हैं। गोवर्धन से हमें नाना प्रकार की जड़ी बूटियां मिलती हैं, जिससे कि हम जब बीमार होते हैं तो हमारे को इलाज किया जा सकता है, और इतनी सारी चीजें हमें प्रदान करते हैं गोवर्धन। तो हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। इतनी सारी जो वर्शिप हम करने के लिए जो साधन इकट्ठे किए, गांव से पूरे इकट्ठे लोग हुए, तो हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो जब भगवान ने इस प्रकार पिताजी को भी कन्विंस कर लिया और गांव वालों को भी कन्विंस कर लिया, तो सबको लगा कि हां हमें गोवर्धन की ही पूजा करनी चाहिए। और फिर एक बहुत बड़ा अन्नकूट फेस्टिवल मनाया गया, जिसमें कि पूरे वृंदावन से सारे गांव वालों ने, ब्रजवासियों ने अपने घर से भगवान की पूजा करने के लिए जितना भी सब कुछ था, शुद्ध घी, गाय का दूध, दही इत्यादि लेकर पहुंचे, और बड़े बड़े अन्न के जो हैं पहाड़ बनाकर भगवान को ऑफर किए गए। क्योंकि भगवान ने उसी समय गोवर्धन के अंदर जाकर कहा कि इसमें और मुझमें कोई अंतर नहीं है, और सब कुछ और भगवान प्रसाद के रूप में, भोग के रूप में खाने लगे और कहा अन्न और आने दो। पूरे के पूरे गांव वालों से सारी प्रकार की ऑफरिंग स्वीकार करी। तो जिस प्रकार वो फेस्टिवल हुआ था माधवेंद्रपुरी को, जब भगवान की गोपाल डिटीज जो हैं जमीन के अंदर से प्राप्त हुए, तो गोपाल जी ने कहा कि मुझे मेरी स्थापना करो, तो तुरंत जो है माधवेंद्रपुरी ने गोपाल जी की स्थापना करी गोवर्धन के ऊपर। और ये खबर जब पूरे समाज में पहुंची तो सब लोगों ने जो है उसी एक ही दिन में इतना बड़ा अन्नकूट फेस्टिवल मनाया कि सब कुछ अपने अपने घरों से जो है लेकर पहुंचे वहां पर। तो यहां बता रहे हैं कि उन्होंने द्वापर युग के अंत में वृंदावन के ग्वालों ने इंद्रराज की पूजा का प्रबंध कर रखा था, किंतु कृष्ण के कहने पर उन्होंने उसका परित्याग कर दिया। इसका उद्देश्य यह भी था कि लोगों को जो कि देवताओं की पूजा में लगे हुए, भगवान चाहते थे कि वो गिरिराज की या मेरी पूजा में लिप्त हो जाएं, क्योंकि भगवान की पूजा करने से हम समस्त 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा एक साथ कर लेते हैं, हरेक के पास अलग अलग जाने की आवश्यकता नहीं। पद्म पुराण में कहा गया है कि शुभ ग्रह भूत पिशाच युक्ता, जिस जो व्यक्ति गोविंद का भक्त है उसके पास ना तो भूत पिशाच निकट आते हैं तंग करने के लिए उसे, और उसके सारे के सारे ग्रह जो है शुभ हो जाते हैं। फिर कह रहे हैं ब्रह्मा आदि देवगणा प्रसन्न, ब्रह्मा आदि देव अर्थात जो ब्रह्मा पहले देवता हैं उनके अलावा जितने और 33 करोड़ देवी देवता हैं ये सारे के सारे प्रसन्न हो जाते हैं, नाराज नहीं होते, दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते कि ओह मेरी भक्ति छोड़ दी, नहीं, तो वो सब प्रसन्न हो जाते हैं उस व्यक्ति से जो कि गोविंद का भक्ति। फिर कह रहे हैं लक्ष्मी स्थित ग्रह मंदिर, उसके घर में जो है स्वयं लक्ष्मी स्थित हो जाती है क्योंकि वो गोविंद माधव की पूजा कर रहा है, अब तो अब लक्ष्मी उनके घर में स्थित हो जाती है। गोविंद भक्ति वहताम नारायण, जो व्यक्ति गोविंद भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है। तो भगवान एश्योरेंस दे रहे हैं, फिर भगवदगीता में एश्योरेंस देते हैं योगक्षेम व्याहम, अगर कोई अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है तो मैं उसके पास जो भी कुछ है उसके पास उसकी मैं रक्षा करता हूं और जो उसकी आवश्यकता है उसे मैं पूरा करता हूं, ठीक है ना। तो इस प्रकार भगवान ने यह सिद्धांत भी पेश किया और सारे ग्वाल वालों को, गांववासियों को अपनी भक्ति में लगाया, गोवर्धन की पूजा में लगाया। फिर बता रहे हैं उसके बदले उन्होंने गायों, ब्राह्मणों तथा गोवर्धन की पूजा का उत्सव चालू किया। उस समय कृष्ण ने अपना विस्तार करते हुए कहा था मैं गोवर्धन पर्वत हूं, इस तरह उन्होंने गोवर्धन पर चढ़ाए गए सारे भोजन का साज सामान को स्वीकार किया। श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के जो है कुछ श्लोकों में 24, 26, 31, 33 में कहा गया है, उसका हम खाली मीनिंग पढ़ देते हैं, यज्ञ से एकत्र किए गए अन्न तथा घी से सभी तरह के व्यंजन तैयार करो, ये भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, चावल, दाल, हलवा, पकौड़ा, पूड़ी तथा दूध की वस्तुएं यथा खीर, रसगुल्ला, संदेश, लड्डू बनाओ। इसलिए भगवान कृष्ण ने ग्वालों को सलाह दी कि वे इंद्र की यज्ञ को बंद कर दें और इंद्र को दंड देने के लिए गोवर्धन पूजा करें, क्योंकि इंद्र स्वर्गलोक का परम नियंता होने के कारण अत्यधिक गर्वित हो उठा है। नंद महाराज समेत सारे ईमानदार तथा सरल ग्वालों ने कृष्ण का प्रस्ताव मान लिया और कृष्ण ने जो भी कहा उसे उन सबों ने विस्तार पूर्वक संपन्न किया। उन्होंने गोवर्धन की पूजा तथा प्रदक्षिणा पूरी की, पूजा भी की और गोवर्धन की परिक्रमा भी लगाई। कृष्ण के आदेश अनुसार नंद महाराज तथा ग्वालों ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ तथा प्रसाद अर्पित करके गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ की। वृंदावन के सारे निवासी एकत्र हुए, उन्होंने अपनी गायें सजाई और उन्हें खाने के लिए घास दी, फिर गायों को आगे करके वे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने लगे। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करने की विधि भी बताई। अगर आप कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार गोवर्धन کے لیے کیا کیا چیزیں وستویں بنانی چاہیے، کس وقت پوجا، پورا کا پورا بتایا. اور کہا جو ایسا نہیں کرتا تو اس کا نقصان بھی بتایا بھگوان نے ایک دوسرے کا، کہ کیا اس کو نقصان ہو سکتا ہے پوجا اگر نہیں کرے گا اس پرکار. پھر اگلے شلوک میں کہا سکل برہمن پوری ویشنو کریلا سی سی سیوا مدھ سبا نیوجیتا. اس افسر پر اپستھت سارے برہمنوں کو مادھن پوری نے ویشنو سمپردائے میں دیکشت کیا اور انہیں وبھن سیوا کاریوں میں لگایا. تو اسی اتسو میں جو ہے دیکشا بھی دینا شروع کر دی مادھویندر پوری نے. شاستروں کے کتھن ہے کہ شٹ کرم نپنو وپرو منتر تنتر وشاردا. بھلے ہی براہمن جاتی میں اتپن ہو یا یوگیہ براہمن اپنے کرموں میں پٹو کیوں نہ ہو، کنتو یہ آوشک نہیں ہے کہ وہ ویشنو ہو. ان کے چھ براہمنوں کرموں کا الیکھ ہوا ہے، جیسے پٹھن پاٹھن، یگیہ یاجن، دان دان اتیادی، ارتھات ویدوں کو پڑھنا اور ویدوں کو پڑھانے میں مدد کرنا، یگیہ کرنا اور یگیہ کرنے میں مدد کرنا، دان کرنا اور دان دینا. براہمنوں کے وشے میں بتایا گیا کہ پروپا جی کہہ رہے ہیں براہمن اپنے یجمانوں سے مکھیتا کشتری ویشن شودروں سے سبھی پرکار کی بھیٹ سویکار کرتا ہے پرتی گرہ ارتھات، کنتو وہ سارے دھن کو اپنے پاس نہیں رکھتا، آوشکتا بھر کے لیے ہی رکھ کر شیش بھاگ انیوں کو دے دیتا ہے. یہ براہمن کی کوالٹی ہوتی ہے. اس لیے براہمن جو ہے زیادہ سمرپت ہو پاتا ہے بھگوان. ایسے یوگیہ براہمنوں کو ارچ وگرہ کی پوجا کرنے کے لیے ویشنو ہونا آوشک ہے. اتے ویشنو کا استھان براہمن سے شریشٹھ ہے. مادھویندر پوری دوارا پردت درشٹان سے اسی کی پشٹی ہوتی ہے کہ کوئی براہمن کتنا ہی پٹو کیوں نہ ہو، جب تک وہ ویشنو منتر دیکشت نہیں ہوتا تب تک وہ پروہت یا وشنو وگرہ کا سیوک نہیں بن سکتا. گوپال کے وگرہ کی استھاپنا کرنے کے بعد مادھویندر پوری نے سارے براہمنوں کو ویشنو دھرم میں دیکشت کر دیا. اس کے بعد براہمنوں کے لیے ارچ وگرہ سمبندھی وودھ سیوا کاریہ نیت کر دیا. تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس ویشنو سمپردائے میں پہلے ہم ہری نام دیکشا کے دوارا گرو جن ہم لوگوں کو پوتر کرتے ہیں اور بھکتی کا کاریہ شروع ہوتا ہے، اور دھیرے دھیرے جب ویکتی کے اندر ویشنو کوالٹیز آنے لگتی ہیں یا براہمنوں کے گن آنے لگتے ہیں تو ایسے لوگوں کو پھر براہمن دیکشا دی جاتی ہے، گوپال منتر اتیادی، جس کے دوارا بھکت لوگ ارچ وگرہوں کی سیوا کر پاتے ہیں. کسی بھی ارچ وگرہ کی رکھوالی کے لیے 4 بجے پراتہ کال سے لے کر راتری کے 10 بجے تک کم سے کم 5-6 براہمن ہونے چاہیے. مندر میں 6 بار آرتی کی جاتی ہے اور ارچ وگرہ کو پرایہ بھوجن چڑھا کر پرساد بانٹا جاتا ہے. روپا جی بتا رہے پوروتی آچاریوں دوارا ودھی ودھانوں کے انوسار نردھارت ارچ وگرہوں کی پوجا ودھی ودھان یہی ہے. ہمارا سمپردائے مادھویندر پوری کی شیشیہ پرمپرا میں آتا ہے جن کا سمبندھ مدھو سمپردائے سے تھا. ہم شری چیتنیہ مہاپربھو کے شیشیہ پرمپرا میں ہیں جنہیں مادھویندر پوری کے شیشیہ ایشور پوری نے دیکشا دی تھی. اس لیے ہمیں شری مادھویندر پوری کے چرن چنہوں کا انوسرن بہت ساودھانی سے کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح گووردھن پروت کی چوٹی پر گوپال کے وگرہ کو استھاپت کیا. تو یہاں پر شیلا پروپا جی بتا رہے ہیں کیونکہ ہم مادھویندر پوری کے پرمپرا میں ہیں تو ہر بھکت کو چاہیے کہ وہ ارچ وگرہوں کی پوجا ارچنا بھی کرے، کیونکہ نودا بھکتی میں ارچن ودھی بھی ایک انگ ہے. اور اس لیے خاص کر گھروں میں گرہنیوں کو چاہیے کہ وہ گھر میں مندروں کی استھاپنا کرے. بھگوان شری رادھا کرشن کے گور نتائی جی کے اس پرکار کے لیمینیشنز رکھ کر اپنی پوجا ارچنا کا سمے بڑھائیں. اور جن پریواروں میں سنکھیا لوگوں کی ادھک ہے تو وہاں پر وہ لوگ ارچ وگرہوں کو بھی رکھ سکتے ہیں اور ودھی ودھانوں کے دوارا بھگوان کی ارچن ودھی شروع کر سکتے ہیں، تاکہ ارچ وگرہوں کی سیوا کرتے کرتے ویکتی ستو گن میں آ جاتا ہے. کیونکہ ارچ وگرہوں کو پوجا کرنے کے لیے ویکتی اپنے حساب سے نہیں چلتا، اب اسے وگرہوں کے حساب سے چلنا ہے اور وگرہوں کو ہی وہ اپنے گھر کا پرم پوجیہ مانتا ہے اور سب اپنے سارے پریوار کے سدسیوں کا وہ سب ان کے داس بن جاتے ہیں. تو بھگوان کی سیوا کرنے کے لیے برہم مہورت میں اٹھنا پڑتا ہے، 4 بجے اٹھ کر نہا دھو کر اسے بھگوان کے وگرہوں کی سیوا کرنی چاہیے اور یا پوجا ارچنا کرنی چاہیے. پربھو جی بتا رہے ہیں 6 سمے بھوگ لگانا چاہیے، لیکن یہ مندر کے اسٹینڈرڈ ہے. گھر میں ویکتی 3 بار بھگوان کو بھوگ لگا سکتا ہے سمے کال پرستھتی کے انوسار، اور اگر وگرہ ہیں تو ان کے شنگار اتیادی سنان اتیادی کرانا. اس سے ویکتی جو ہے ترنت بھگوان سے اٹریکٹ ہوتا ہے، ارتھات بھگوان کی سیوا کرنے سے، کیونکہ من وانی کرم کو اس نے بھگوان کی سیوا میں لگایا ہے تو شدھیکرن بڑی تیزی سے ہوتا ہے اور اس طرح وہ ستوگن میں اڑتا ہے جس سے کہ وہ ادھک سیوا کر کر بھگوان کے نکٹ پہنچتا ہے. تو یہاں پر بتا رہے ہیں کیول उन्होंने इस तरह गोवर्धन पर्वत की चोटी पर गोपाल के विग्रह को स्थापित किया, किस तरह उन्होंने केवल एक ही दिन में अन्नकूट उत्सव की तैयारी की और उन्हें संपन्न किया आदि। अमेरिका तथा यूरोप के धनी देशों में हम अर्च विग्रहों को स्थापना की जो स्थापना करें उसे श्री माधवेंद्रपुर के कार्यों के ही अनुसार होना चाहिए। विग्रह के सारे सेवकों को सर्वथा योग्य ब्राह्मण होना चाहिए और उन्हें यथासंभव अधिक से अधिक मात्रा में प्रसाद चढ़ाने, उसे भगवान का दर्शन करने आए हुए भक्तों को बांटने की वैष्णव प्रथा का पालन करना चाहिए। इसलिए हमारे मंदिरों में भी पूरे विश्व भर में जहां जहां पर भी विग्रहों की स्थापना है तो वहां पर फूड फॉर लाइफ जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जहां पर कि भगवान के विग्रहों को प्रसाद चढ़ता है भोग, और उसके बाद आए हुए वैष्णवों को या लोगों को भी प्रसाद का वितरण होता है। जिस तरह हम देख सकते हैं हमारे यहाँ मॉर्निंग में और इवनिंग में खिचड़ी प्रसाद का वितरण होता है। मायापुर में तो प्रभुपाद जी ने साफ साफ इंस्ट्रक्शन दी कि लगभग कितनी दूरी तक, 10 किलोमीटर तक के एरिया में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। इसलिए वहां पर जो है प्रसाद की मात्रा आप देखेंगे हमेशा ज्यादा रहती है और बांटा भी जाता है। तो इस प्रकार प्रभुपाद, क्योंकि प्रसाद जो है और प्रसाद और कृष्ण में क्योंकि कोई अंतर नहीं है, जब भी कोई व्यक्ति प्रसाद पाता है तो वो उंगलियां चाटता रह जाता है और उसको उसके जो हृदय का जो कलमश है वो धीरे धीरे साफ होना शुरू, उसको पता भी नहीं चलता कि सफाई कैसे हो रही है। कई देशों में जहां पर कि अर्च विग्रह को हम स्थापित नहीं कर सकते, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर कि मुस्लिम देशों में, तो वहां पर गोविंदा रेस्टोरेंट करके हम लोगों के कुछ संस्थान हैं रेस्टोरेंट, जहां पर कि भक्तों के द्वारा बनाया गया और भक्तों के द्वारा वितरित, भक्तों के द्वारा ऑफर किया गया प्रसाद जो है वहां पर वितरित होता है और बहुत ही कम मूल्य में लोगों को दिया जाता है। तो लोग उसे वहां पर जो है एक रेस्टोरेंट समझ के जाते हैं और उस प्रसाद से आकर्षित होकर, उस प्रसाद तो नहीं बोलते वहां पर, बट ये बोलते हैं कि खाने की चीज है, तो खाते हैं और धीरे धीरे वो इतने योग्य बन जाते हैं कि आने वाले दिनों में वो भक्ति में लग जाते हैं और या उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है भगवान को जानने की ओर। तो इस प्रकार कई जगहों पर होता है। आगे कह रहे हैं, पुनः दिन शेष प्रभु कराइला उत्थान, किछु भोग लगाइला कराइल जलपान। विश्राम के बाद विग्रह को संध्या समय जगाना चाहिए और तुरंत ही उसे कुछ ना कुछ खाने और पीने के लिए दिया जाना चाहिए। जैसे हम लोग 1 बजे भगवान को रस कराते हैं, उसके बाद फिर से 4:15 बजे उत्थान आरती, अर्थात भगवान को फिर से उनकी पूजा अर्चना होती है और संध्या समय में उनको भोग भी लगाया जाता है। फिर क्या, गोपाल प्रकट हेला देश शब्द हेला, आशे पाश ग्रामीण लोक देखिला आईला। जब देश भर में यह प्रचार हो गया कि भगवान गोपाल गोवर्धन पर्वत पर प्रकट हो चुके हैं तो आसपास के गांव वाले विग्रह का दर्शन करने आए। ये पूरा का पूरा फेस्टिवल इसलिए भी गया क्योंकि एक शुद्ध भक्त थे और उनको पता चला कि जब सबको पता चला कि एक विग्रह प्रकट हुए हैं और गोवर्धन के पर्वत पर उसको स्थापित किया गया है, तो दूर दूर से लोग भगवान के विग्रह को दर्शन करने के लिए आने लगे। बहुत उत्साहित थे भगवान का दर्शन करने के लिए कि हाँ एक ऐसे विग्रह गोपाल जी प्रकट हुए हैं तो उनका दर्शन करना चाहिए। लेकिन हमको मालूम है कि कहां पर है विग्रह, लेकिन हमारे अंदर उस तरह का उत्साह नहीं है कि भगवान का दर्शन करने जाएं। कितने विग्रह यहां पर ऐसे हैं वृंदावन में जो स्वयं प्रकट हुए हैं, गोपाल जी के, साक्षी गोपाल जी के, नाना प्रकार के विग्रहों ने जो सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं, लेकिन हम लोग अपने काम धंधे में इतने फंसे रहते हैं कि सुनने के बाद इच्छा भी डेवलप नहीं होती कि हाँ कभी हम जाएं और जल्दी से दर्शन कर करें। ये वही विग्रह हैं जो माधवेंद्रपुरी ने प्रकट किए, ये उनके समक्ष प्रकट हुए और ये वही लोग हैं जो आसपास के गांव हैं से भी वहां पर उनका दर्शन करने लगे। क्यों? क्योंकि वो लोग ऐसे सतोगुण के माहौल में रहते थे। आजकल का माहौल सतोगुण का नहीं रहा, शहरों का माहौल तो पूरा रजोगुण से भरा हुआ है या तमोगुण से भरा हुआ है। तो यहां पर जितनी मर्जी कथाएं सुना लें फिर भी लोगों के अंदर इच्छा जागृत नहीं होती कि हाँ चलो हम भगवान का दर्शन करें जाके, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा नुकसान है हमारी चेतना का। एक एक दिन एक एक ग्राम लैला मगिया, अन्नकूट कर सब हर्षित है ना। हर गांव वालों ने एक एक करके माधवेंद्रपुरी से प्रार्थना की कि हे कि अन्नकूट उत्सव मनाने के लिए उन्हें उनका दिन नियत कर दिया जाए। इस तरह कुछ समय तक दिन प्रतिदिन अन्नकूट उत्सव मनाया जाता रहा। भक्तों के अंदर इतना उत्साह था कि उन्होंने माधवेंद्रपुरी से प्रार्थना करी कि हमारा एक दिन बांध दीजिए आप, ताकि उस दिन हम लोग आके अन्नकूट फेस्टिवल मनाएं भगवान के लिए। तो इस तरह वैसे 365 दिन फेस्टिवल चलते रहना चाहिए, भक्तों के अंदर भाव था, इसलिए उन्होंने इस तरह की बात करी। कई दिन तक जो है अन्नकूट फेस्टिवल चलता रहा। रात्रि काले ठाकुरे कराई लयन पूरी गोसाई केला किछु गव्य भोजन। श्री माधवेन्द्रपुरी ने दिन भर कुछ नहीं खाया। अब भाई जहां फेस्टिवल हो तो अरेंजमेंट देखने में टाइम लगता है, दीक्षा दी सब कुछ किया, कुछ नहीं खा पाए दिन भर। किंतु रात में विग्रह को सुला देने के बाद उन्होंने दूध से बने कुछ वस्तुएं ली। हमारे भी भक्त लोग कई बार फेस्टिवल होता है तो बहुत बिजी रहते हैं, खा तो लेते हैं लेकिन माला रह जाती है। और वो जिस तरह माधवेन्द्रपुरी ने विग्रह को सोने के बाद सिस्टम किया तो भक्त लोग भी जो है भोजन तो जल्दी हो जाता है लेकिन जब इत्यादि रह जाए तो फिर जब करते हैं पूरी रात बैठकर। फिर कह रहे हैं प्रातः काले पुना तेज करी ल सेवन अन्य लना एक ग्राम आई लोकगण। पुनः अपनी सॉरी पुनः अगली सुबह अर्च विग्रहों की सेवा प्रारंभ हुई और एक गांव के लोग विविध प्रकार के पकवान लेकर आए। तो अब गांव के द्वारा ही मतलब ड्यूटीज लग गई कि अब आपको अन्नकूट फेस्टिवल मनाना है, तो गांव के द्वारा पूरा गांव का गांव जो है नाना प्रकार के भोजन लेकर आता था। फिर अन्न धृत दगी दुग्ध ग्राम यथीला गोपाल एरा आगे लोक आनीला धरीला। गांव के सारे निवासी गांव भर का सारा भोजन अन्न घी दही तथा दूध गोपाल के अर्च विग्रहों पर चढ़ाने के लिए लाए। रूपाजी तात्पर्य कह रहे हैं वास्तव में अन्न धृत दही तथा दूध यही सारे भोजन के आधार हैं, शाक तथा फल तो गौण है। अन्न धृत दूध तथा धृत से लाखों प्रकार के व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं, लाखों प्रकार के दूध दही से तैयार किए जा सकते हैं। अन्नकूट उत्सव में गोपाल को अर्पित किए गए भोजन में यही पांचों सामग्रियां थी। जो असुर हैं वे ही अन्य प्रकार के भोजन के प्रति आकृष्ट होते हैं, किंतु यहां हम उनका उल्लेख नहीं करेंगे। हमें यह समझना होगा कि पौष्टिक भोजन तैयार करने के लिए हमें अन्न घी दही तथा दूध की ही आवश्यकता होती है। ये सात्विक व्यंजन है, इन सब का सेवन करने से व्यक्ति की उम्र भी बढ़ती है, उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, उस सात्विक वृत्ति का भोजन कराने से वो सतोगुण में भी रहता है, उसके अंदर नाना प्रकार के सुंदर गुण भी विकसित होते हैं। लेकिन जब हम लोग रजोगुण में रहते हैं, रजोगुण के भोजन प्राप्त करते हैं, तो उससे हमारे अंदर नाना प्रकार की उत्तेजनाएं विकसित होती हैं और मोह बढ़ता है, और लोभ बढ़ने के कारण मोह बढ़ने का इंद्र तृप्ति करने का मन करता है और व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। तो प्रभुपाद जी उन लोगों को असुर वृत्ति के लोग बता रहे हैं। अर्च विग्रह को हम इसके इनके अतिरिक्त और कुछ भी अर्पित नहीं कर सकते। वैष्णव पूर्ण मनुष्य होने के नाते अर्च विग्रहों पर अर्पित भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ भी ग्रहण नहीं करते। तो यहां पर प्रभुपाद जी ग्रहण करने की बात कर रहे हैं कि वैष्णव जन क्या खाते हैं। तो कह रहे हैं वैष्णव जन अर्च विग्रहों को चढ़े हुए भोग को ही अर्पित भोग को ही ग्रहण करते हैं। जैसे अलग अलग स्टैंडर्ड हैं, कई बार जो लोग भक्ति में नए नए आते हैं तो वो अगर ये सुनेंगे कि ओ वैष्णव बनना है मुझे लेकिन अर्च विग्रहों को अर्पित ही चीजें खानी है, और अर्च विग्रहों को अर्पित तो बड़े सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है, उसमें प्याज नहीं होना चाहिए, लहसुन नहीं होना चाहिए, तो कई बार लोग थोड़ा पीछे हट जाते हैं इस तरह के। लेकिन हम देख सकते हैं शुरुआत में व्यक्ति अगर प्रयास करे तो स्टैंडर्ड तो यही है कि उसे वैष्णव या ब्राह्मणों के द्वारा ही बना हुआ भोजन और उनके द्वारा ही अर्पित भोजन खाना चाहिए, स्टैंडर्ड ये है। लेकिन अगर इतना नहीं हो सकता तो व्यक्ति फिर क्या करे, जो दीक्षित भक्त हैं नव दीक्षित भक्त उनके द्वारा भोजन को बनाए बनवाए और खा सकता है, ग्रहण कर सकता है। अगर ऐसा स्टैंडर्ड भी उपलब्ध नहीं है या खुद के घर की बात है और कोई दीक्षित नहीं है तो जो सोला माला करते हैं उनके द्वारा भोजन को स्वीकार कर सकते हैं। और कहीं पर ऐसा हो कि कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं मिल रहा और खुद को बनाना नहीं आता तो हम लोग ऐसे वैष्णव भोजन का प्रयास करें जहां पर कि प्याज और लहसुन और इस प्रकार की चीजें उपलब्ध ना हो, ऐसी चीजों का सेवन कर सकते हैं। ये सबसे आखिरी का है। और अगर इससे भी नीचे गिरना है या इससे भी नीचे की स्थिति है तो फिर तो कुछ भी खा लो, जैसे कि प्रभुपाद जी बोला असुरों की भांति कहीं भी खा लिया कुछ भी खा लिया। क्योंकि अन्न जो दोष है उसके द्वारा हमारी चेतना के अंदर परिवर्तन आता है। जो व्यक्ति अन्न बनाता है उसकी जैसी चेतना है, अन्न ग्रहण करने वाले की चेतना भी वैसी हो जाती है। उसके अंदर भी इस प्रकार की मटीरियल डिजायर से काम वासना जागृत हो जाती है, जिस प्रकार की उस रजोगुनी या तमोगुनी व्यक्ति ने बनाने उसकी चेतना है। इसलिए व्यक्तों को बहुत ही सावधानी पूर्वक भोजन को ग्रहण करना चाहिए। तो प्रयास करना चाहिए टॉप मोस्ट स्टैंडर्ड रखें, नहीं होता तब थोड़ा सा नीचे कंप्रोमाइज कर सकते हैं। लोग प्राय राष्ट्रीय खाद्य नीति से विचलित हो जाते हैं, किंतु वैदिक खाद्य शास्त्रों को देखकर यह पता चलता है कि यदि प्रचुर गायें तथा अन्न हो तो सारी खाद्य सामग्री हो जाएगी। देश में जैसे खाने की समस्या को लेकर बात कर रहे हैं, तो प्रभा जी कह रहे हैं अगर प्रचुर मात्रा में हमारे पास गायें हैं और अन्न है तो सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। हम जानते हैं कि पूरे विश्व भर में अन्न इतनी मात्रा में उगता है कि उसे समुद्रों में गिराया जाता है ताकि उस रेट को मेंटेन कर सकें, उस देश की अर्थव्यवस्था को मेंटेन कर सकें। भारत में या अमेरिका जैसे देशों में या नॉर्वे में इतना दूध उत्पन्न होता है कि उनको केवल नदियों में फेंका जाता है या समुद्र में गिराया जाता है, क्योंकि अगर उन्होंने फ्री बांटना शुरू कर दिया तो उनको लगेगा कि भैया तो फ्री बट गया तो लोग कैसे उसी रेट पर खरीदेंगे, और रेट अगर वो नहीं चलेगा तो सारी की सारी अर्थव्यवस्था हमारी डाउन हो जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा विश्व जो है इस समय गलत दृष्टि उसमें जा रहा है। इसलिए भगवद गीता में संस्तुति की गई है कि वैश्य जन अन्न उत्पन्न करें और गांवों की सुरक्षा करें गायों की। गौवें सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु है क्योंकि वे दूध जैसा चमत्कारी भोजन प्रदान करती है जिसे घी तथा दही जैसे चीजें तैयार की जा सकती है। मानव सभ्यता की सफलता कृष्ण भावना पर आधारित है जिसमें अर्च विग्रहों की पूजा की संस्तुति की गई है। हमारे इस वैष्णव धर्म में अर्च विग्रहों की स्थापना उनकी पूजा अर्चना की बात की जा रही है या की गई है, लेकिन कई धर्मों में अर्च विग्रहों की पूजा पर प्रतिबंध है या जो अर्च विग्रहों की पूजा करते हैं उन्हें निकृष्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस धर्म के लोग उनकी मानसिकता या वो इतने अच्छे गुण सतोगुण में अभी विकसित नहीं है, इसलिए वो लोग अर्च विग्रहों को भगवान मान ही नहीं सकते। वो इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि हर कण में भगवान उपस्थित है, जर्रे जर्रे में भगवान है, लेकिन जब उस जर्रे से उस कण से विग्रहों को बनाया जाता है तो उसमें वो भगवान नहीं समझते। जबकि शास्त्रों के अनुसार बनाए गए इन विग्रहों में, जो कि बताया गया शास्त्रों में कि विग्रहों का रूप इस प्रकार का होता है, भगवान ने इस प्रकार उनके हाथ में ये होता है, वो इस प्रकार खड़े होते हैं, इस प्रकार के आभूषण पहनते हैं, इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, तो जब शास्त्रों में इन चीजों का वर्णन मिलता है और आचार्यों के द्वारा इतने सारे विग्रहों की स्थापना की गई, प्रकट किए गए, इवन भगवान स्वयंभू अर्थात कई जगहों पर स्वयं प्रकट हुए, जैसे कि अगर हम लोग दक्षिण भारत में देखें तो वहां पर इतने सारे दिव्य देशम हैं। दिव्यम देशम मतलब वो मंदिर जिन मंदिरों में भगवान स्वयं प्रकट हुए, लगभग 108 से भी अधिक विग्रह स्वयं प्रकट हुए हैं वहां पर, जिसमें कृष्ण के विग्रह हैं, राम के विग्रह हैं, विष्णु के विग्रह हैं और लेटे हुए आदि केशव है ना, और श्रीरंगम में जो हम देखते हैं भगवान सिंहाचलम इत्यादि नाना प्रकार के विग्रह स्वयं हुए हैं या स्वयं प्रकट हुए और इनकी अर्च विग्रहों की इनकी पूजा अर्चना की जा रही है। तो पूजा अर्चना करने के लिए क्योंकि व्यक्ति को सतोगुण में आना पड़ता है, सारे विधि विधानों का पालन करना पड़ता है, ऐसा व्यक्ति जो पहले ही तमोगुण में है या रजोगुण से ग्रस्त है वो इस प्रकार के स्टैंडर्ड फॉलो कर ही नहीं सकता, क्योंकि अर्च विग्रहों की सेवा करने के लिए व्यक्ति को कम से कम सतोगुण में या उस नियमों का पालन करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति तमोगुण या रजोगुण के मिश्रण में है वो विग्रहों को उतना सम्मान दे ही नहीं सकता, उनके प्रति क्या करेगा, केवल ऑफेंस। इसलिए सभी धर्मों में विग्रहों की अर्चन की स्तुति नहीं की गई, केवल उन धर्मों में या उन जगहों पर की गई जहां पर कि लोग उसको सम्मान दे सकते हैं या पूजा अर्चना कर सकते हैं, उस प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। शाक अन्न दूध घी तथा दही जैसे से बने व्यंजन अर्च विग्रहों को अर्पित करके वितरित किए जाते हैं। हमें यही पर पूर्व तथा पश्चिम का अंतर देखने को मिलता है। जो लोग गोपाल विग्रह का दर्शन करने आए थे वे सभी अपने साथ विग्रह को अर्पित करने हेतु तरह तरह के पकवान लाए थे। वे अपने साथ जितना भी भोजन उपलब्ध था लेते आए थे और वे अर्च विग्रहों के समक्ष न केवल प्रसाद ग्रहण करने के लिए खड़े थे अपितु उन्हें अन्यों में वितरित करना भी चाहते थे। कृष्ण भावनामित आंदोलन भोजन बनाने फिर उसे अर्च विग्रहों को अर्पित करके सामान्य लोगों को वितरित करने की प्रथा का हामी है। इस कार्य को सारे विश्व में प्रसारित करना चाहिए। क्योंकि इससे लोगों की भोजन की आदतें सुधरेंगी। अभी तो कुछ भी खाने की आदतें हैं, कहीं भी खाने की आदतें हैं, लेकिन जब इस प्रकार अर्च विग्रहों को चढ़ाए गए भोग को प्रसाद रूप में जब वितरित करेंगे तो लोगों की चेतना शुद्ध होगी, इससे लोगों को भोजन अर्थात प्रसाद के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने इस कल्चर को शुरू किया तो आज लगभग पूरे विश्व भर में हर जगह हम देख सकते हैं लोग अधिक से अधिक संख्या में वैष्णव बन रहे हैं। और वैष्णव, यही वैष्णव जन अपने घर में जो खाना बनाते थे, क्योंकि भगवान भगवद्गीता के तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं जो अपने मन पसंद अपनी मर्जी से अपने को सुख देने वाले भोजन बनाते हैं वो केवल पाप खाते हैं, चाहे वो वेजिटेरियन ही क्यों ना, क्योंकि शाक इत्यादि में भी जीवन है। लेकिन भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त परिचिति, परिचिति मतलब विद लव एंड अफेक्शन। अगर कोई मुझे पत्ता पुष्प फल या शाक सेवन जो भी वो खाना चाहता है जो कि सात्विक है, जिसमें तमोगुण और रजोगुण का मिश्रण नहीं है पकवानों का, अगर मुझे प्यार से प्रेम पूर्वक अर्पित करता है और फिर उसे खाता है तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। कितने प्रकार के पाप हैं? सैकड़ों प्रकार के पाप, जिसमें गौ हत्या, माता पिता की हत्या, ब्राह्मण की हत्या। अगर कोई व्यक्ति केवल भोजन खा रहा है तो उसको ये पाप लग रहे हैं, लेकिन अगर वो प्रसाद खा रहा है तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो कई बार हमने देखा है लोग नवरात्रों में 9 दिन के अंदर तपस्या करते हैं और उन नवरात्रों में लोग प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करते, क्योंकि देवी मां की पूजा के लिए भी लगभग 9 दिन की पवित्रता चाहिए, लेकिन कृष्ण भक्ति के लिए तो 365 दिन की पवित्रता चाहिए, सतोगुण में उठना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान के भक्त 365 दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करते। कई परिवारों में हमने देखा कि भक्त लोग जब नवरात्रि रखते हैं उससे पहले तो बोलते हैं कि हम लोग बिना प्याज लहसुन के रह नहीं सकते, ये नहीं मानते, वो नहीं मानते, ये नहीं मानती, मेरा बेटा नहीं मानता, इसलिए टेस्ट नहीं आता, इसलिए खाना पड़ता है। लेकिन नवरात्रों में 9 दिन जब वो भोजन बनाते हैं और खाते हैं बिना प्याज लहसुन का, अगर उसी दिन वो जो है वो भगवान कृष्ण को तुलसी दल डालकर अर्पित करने लग जाए और प्रसाद रूप में खाने लग जाए तो 10वें दिन से अपने आप उनकी इच्छा करेगी क्या कि अब तो प्रसाद ही खाना चाहिए, तो इतना फर्क पड़ जाता है लोगों के अंदर। और जिन लोगों को लगता है बहुत मुश्किल है तो वो शुरुआत कर सकते हैं हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 3 दिन बिना प्याज और लहसुन का बनाकर भगवान को अर्पित करके भोजन वो प्रसाद रूप में खाने का, या दिन में 3 बार बनाते हैं तो उसमें से 1 बार शुरुआत कर सकते हैं या 2 बार शुरुआत कर सकते हैं। अगर घर में सारे जीव के टेस्ट के लिए हैं, असुरी वृत्ति के हैं और मना करते हैं तो छुपके छुपके कराया जा सकता है काम, नहीं 2 सब्जियां बनाएं तो 1 में डालें और 1 में ना डालें, उनको खिला दें बाकी प्रसाद रूप में खाएं और खिलाएं। तो इस प्रकार चतुराई दिखा सकते हैं भक्त लोग, दिखाते भी। तो इस कार्य में रूपा जी कह रहे हैं कि कृष्ण भावन आंदोलन भोजन बनाने फिर से उसे अर्च विग्रह अर्पित करने के लिए भोजन खिलाने के लिए तैयार हुआ है, इससे लोगों की भोजन की आदतें सुधरेंगी और आसुरी आचरण में सुधार होगा। आसुरी सभ्यता में विश्व में कभी भी शांति नहीं आ सकती, क्योंकि भोजन करना मानव समाज का सर्वप्रथम आवश्यकता है। अतः जो भोजन बनाने और उसे वितरित करने में कार्य में लगे हैं उन्हें माधवेंद्रपुरी से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और अन्नकूट उत्सव मनाना चाहिए। हम देखते हैं कि कई बार सड़कों पर बड़े बड़े टेंट लगाए जाते हैं और भक्त लोगों के अंदर बड़ी उत्साह होता है लोगों को फ्री में खाना खिलाने का, लेकिन वो उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या बनाना है कैसे बनाना है, आलू पूड़ी बांटने जाते ना तो लोगों का भाव होता है कि हम कुछ अच्छा पुण्य कार्य करें, लेकिन अज्ञानता के कारण वो कुछ भी बनाते हैं और कुछ भी बांट देते हैं। अगर वही व्यक्ति किसी भक्त के संग में आ जाए या कोई व्यक्ति से मिले उसे बोले कि भैया आप जो भी बना रहे हो उसमें प्याज लहसुन का सेवन, नहीं जी नहीं प्याज लहसुन तो नहीं डालते, अच्छा नहीं डालते तो वेरी गुड, आप उसमें तुलसी दल डाल के पहले भगवान को ऑफर कीजिए और फिर हजारों लोगों को जो खिला रहे हो सारे प्रसाद ही खाएंगे तो कितना ज्यादा स्वीकृति प्राप्त होगी, है ना। लेकिन सड़कों पर कोई भी कहीं भी कुछ भी डोने में दे देकर प्रसाद बोलकर बांटता है, भगवान के आगे रखा ना रखा हो लेकिन डोने में रखा है तो प्रसाद है और लोगों को लगता है कि प्रसाद ही होगा क्योंकि डोने में बड़ी सी पत्तल वाली प्लेट में, हाँ जी प्रसाद है। तो इस प्रकार लोगों को जो है इस प्रकार जो पाप खाना पड़ता है। अतः भोजन बनाने और उसे वितरित करने के कार्य में लगे, उन्हें माध्यमिक पुत्र से शिक्षा लेनी चाहिए कि किस प्रकार जो है अन्नकूट उत्सव मनाना चाहिए। जब लोग, कई भक्त लोग हैं जो अपने घर में विग्रहों को रखते हैं और 56 भोग हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार भगवान को अर्पित कर वो तो बहाना ढूंढते हैं कि किस प्रकार मैं सुबह से लेकर शाम तक अंगेज रहूं, या दो चार लोगों को और पड़ोसी से बुलाऊं कि बनाओ भोग भगवान के लिए, और भगवान को अर्पित करते हैं 56 भोग, और फिर वो 56 परिवारों में या कई परिवारों में जाकर बांटते हैं। इससे क्या हुआ, एक तो खुद भगवान की सेवा में लगे, पड़ोसियों को भगवान की सेवा में लगाया, और जितने लोगों को खिलाया उनकी भी शुद्धि हो गई, उनके भी पाप खत्म हो गए। तो भक्त लोग इस प्रकार योजनाएं बनाते हैं। अन्यथा पैसे का मतलब क्या है, धन के का उपयोगिता क्या है? धन का मतलब ही है कि वो भगवान की सेवा में लगे। तो भक्त लोगों को चाहिए खूब व्यंजन बनाएं, भक्तों को इनवाइट करें, भक्तों को खिलाएं, और इसके अलावा आसपास के लोगों को भी खूब खिलाएं, भरपेट खिलाएं, नो प्रॉब्लम। हम देखते हैं कि हमारे घरों में आते हैं सुबह शाम, कई लोग मांगने आते हैं, हां जी दे दो, है ना, साधु के रूप में आते हैं, आप उनको पैक करके प्लेट प्रसाद दे दो ना कि जो लो जी हरे कृष्ण, यही तो चाहिए। हम कहीं पर थे तो एक व्यक्ति मांग रहा था कुछ कि दे दो, उसने थोड़ा सा रास्ता बताया हमें, और सबको रास्ता बताता और पैसे मांगता था कि खाने के लिए दे दो, खाने के लिए दे, ऐसा इशारा करके। तो थोड़ा सा झुका तो मैंने देखा उसके जेब में इतनी सारी 10-10 की गड्डी थी। मैंने कहा अरे ये तो बहुत अमीर आदमी भाई, है ना, इतना इकट्ठा कर लिया, इसे 3 घंटे सुबह से 3 घंटे हुए, इसने इतना इकट्ठा कर लिया, सबको इशारा करना खाने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि अन्न प्रचुर मात्रा में समाज में है, सबको मिलता है, और दानी भी लोग खूब हैं, लेकिन ढंग से बुद्धिमानी से करना चाहिए सारा काम। तो अब इसको खत्म करते हैं, हम बता रहे जब लोग अर्चविग्रहों को अर्पित किया प्रसाद ही खाएंगे, खाने लगेंगे, तो असुर भी वैष्णव बन जाएंगे। हरि बोल। क्योंकि प्रसाद खाने से असुरी वृत्ति समाप्त होती है। हम जानते हैं कि इस मूवमेंट में जुड़ने से पहले सारे असुर, मेरा मतलब है सारे लोग जो है जो प्रसाद नहीं खाते थे, लेकिन इस मूवमेंट में जुड़ने से प्रसाद खाकर हरिनाम लेकर क्या बन गए, वैष्णव, बोलो ना, सुर में आ वैष्णव बन गए ना, तो सारे के सारे वैष्णव बन जाएंगे। जब लोग कृष्ण भावना भावित होंगे तो सरकार भी वैसी ही बनेगी। बिल्कुल सही बात है। धीरे धीरे जब वैष्णवों की संख्या बढ़ेगी तो सरकार भी वैसी बनेगी, क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में वैष्णव उपस्थित होंगे जो जानते हैं सही क्या है गलत क्या है, तो ये गलत व्यक्ति को वोट ही नहीं देंगे, और जब गलत व्यक्ति को वोट नहीं मिलेगा या जिसको वोट मिलेगा उसको मालूम है संख्या वैष्णवों की ज्यादा है, तो मुझे वैष्णवों के अकॉर्डिंगली ही सरकार चलानी चाहिए। नहीं तो फिर कोई वैष्णव खड़ा होगा कि मैं आज खड़ा हूं इस इलेक्शन में, आप सब मुझे वोट दीजिए, मैं करूंगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि हमारी सरकार में जितने भी एमपी हैं उन्हें 4 नियमों का पालन करना चाहिए, 16 माला का जप करना चाहिए, और ब्राह्मण दीक्षित होना चाहिए, और दिन में 3 बार कीर्तन निकालना चाहिए। अब बताइए किसी देश की सरकार उसके एमपी कीर्तन करेंगे? कीर्तन का मतलब भगवान की कीर्ति का गान। वो तो संसद में बैठकर एक दूसरे के ऊपर जूते चप्पल फेंकते हैं, पैसों की गड़ियां फेंकते हैं, और वो एमपी बना ही इसलिए कि वो सारे नियमों को तोड़ सके, 4 नियमों को तोड़ने के लिए एमपी बनाए। उस दुनिया भर का मानसार वो करेगा, नशा वो करता है, अवैध संबंध वो छुप छुप के करता है, है ना, वो काम वो, उसके पास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस प्रकार के अवैध संबंध में उसकी हेल्प करते हैं करने में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जगह वो मेंबर ऑफ तो कहने का मतलब क्या, इस तरह के वो मेंबर बनते हैं, और अगर कोई व्यक्ति ठीक भी पहुंचाए संसद में तो उनके संघ से वो दूषित हो जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को शायद पत्र लिखा था और कहा था कि आपको चाहिए कि आपके संसद में इस प्रकार के लोग होने चाहिए, या सारे ब्रह्मचारीज को या उन सेल्फलेस डिवोटेस गृहस्था को एमपी या एमएलए होना चाहिए जिनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर सरकार को इस प्रकार करना है, भ्रष्टाचार को रोकना है, तो जैसे ऐसे लोगों के ऊपर चलना चाहिए, और जो भी एमपी बने या एमएलए बने या काउंसलर बने उनके खाते सार्वजनिक किए जाएं, या उनको किसी भी प्रकार, अगर वो सेवा करने आए हैं तो उनको किसी भी प्रकार की सैलरी नहीं दी जानी चाहिए। सरकार के द्वारा उनका फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर बीमार हूं, सुबह दोपहर शाम 3 वक्त सुंदर भोजन कराया जाना चाहिए, महीने में उनको 1 जोड़ा कपड़ा दिया जाना चाहिए, साल में 12 जोड़े, गाड़ी आने जाने का पूरा खर्चा रखरखाव देना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं देना चाहिए। इसके अलावा उसके पास अगर कहीं से पैसा आ गया तो उसको पद से हटा देना चाहिए, है ना जी। کتنا آسان ہو جائے گا نا دیش چلانا. کوئی بھی ایم پی کی پوسٹ کے لیے ایم ایل اے کی پوسٹ کے لیے کیا نہیں کرے گا, کوئی نہیں کھڑا ہوگا. کہ کیوں کھڑا ہوں بھائی میں, پیسے کے لیے تو کھڑا ہوا تھا میں. اتنا کروڑ روپے میں نے ٹکٹ کے لیے لگایا, اتنا کروڑ روپے میں نے جیتنے کے لیے لگایا, اتنے کی شراب بانٹی, ابھی جب میں کھڑا ہوگا تو وصول کرنے کے لیے تو کھڑا ہوں. تو اگر صاف صاف سرکار کے دوارا یہ نیت کیا دیا جائے کوئی بھی ایم ایل اے بنے گا, ایم پی بنے گا, یا ایم پی بنے گا یا دیش کا پردھان منتری بنے گا, تو ان کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہوگا, یا ہوگا تو جو اس کے پاس پہلے پڑا ہے وہ اتنا ہی رہے گا, اور اس کو کیول بھوجن ملے گا, رہنے کا استھان ملے گا, آنے جانے کا خرچہ ملے گا, ٹریٹمنٹ اچھا ملے گا, تین ٹائم کا بھوجن ملے گا, کپڑے ملیں گے, دیٹس آل. یہ ان کی سیلری پانچ سال کے لیے, اور اس کے رشتے دار, اس کے بھائی بند سب کا اکاؤنٹ چیک کیا جائے گا, کیونکہ نہیں تو رشتے داروں کے نام پہ لے لیتے نا. بتائیے کوئی ہے مائی کا لال, کوئی ایسا ایم پی ایم ایل اے یا کاؤنسلر جو کہے کہ اس پراودھان کے دوارا میں کھڑا ہونا چاہوں, کوئی نہیں ہوگا. تو اس لیے روپا جی کہیں گے کرشن بھاونا میں سرکار بنے گی, اور جب لوگ کرشن بھاوت ہوں گے سرکار بھی ویسے بنے گی. کرشن بھاونا مت ویکتی سدیو اتینت ادار ایوم ہر ایک کا شبھ چنتک ہوتا ہے. جب ایسے لوگ سرکار سنبھالیں گے تو لوگ نشچت روپ سے نشپاپ ہو جائیں گے. تب اتپات مچانے والے اسر نہیں ہوں گے, تبھی سماج میں شانتیمے واتاورن بنا رہے گا. ہرے کرشنا. تو اس پرکار جو ہیں آج پرپات جی نے چیتن چمت کے مادھویندر پور کی کتھا میں کچھ ایسے پرپٹ دیے ہیں جس کے دوارا کہ سماج کو کیسے چلنا چاہیے, پرساد کا بھوگ یا ارچی گروہوں کی سیوا کیسے کرنی چاہیے, اس کا میسج ہمیں ملتا ہے. آپ سب کا دھنیہ. ہرے کرشنا. شیلا پرپاد کی ہیرا پنچمی, جیسے پور جی پوچھ رہے تھے, ہیرا پنچمی بتاتے ہیں کہ جب جگنناتھ مندر میں بھگوان کا بتا رہے تھے پربھو جی کی, پانچویں دن بھگوان واپس آتے ہیں, لکشمی جی پنڈا ان کو آنے نہیں دیتے کرشن مطلب جگنناتھ بلدیو سبھدرا مہارانی کو, تو پھر پنچمی کے دن وہ آتے ہیں, تو ہیرا پنچمی کا فیسٹیول کیا جاتا ہے. اور کسی کچھ پوچھنا تو پاس رکھو جی پورا جانتے ہیں اس کے وشے. دھنیہ واد. ہرے کرشن. شیلا پروپاد کی چیتنیہ چرتامرت گرنتھ کی. گیتا گور پریمانند.